हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। खेल शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हुई उससे पहले ही एक आवाज़ उन तीनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। ठहरो, ये खेल नहीं खेला जाएगा। उन दोनों लोगों के साथ ही रिदांश भी आवाज़ की दिशा में देखता है। वहाँ लगभग उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था जिसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ नज़र आ रहा था और जो अपने पहनावे से एक अच्छा खासा खाता पीता घर का नज़र आ रहा था। कुछ ही पल में वो लड़का रिदांश की टेबल पर आकर खड़ा हो जाता है। लड़का रिदांश से, तुम्हें इस बेकार सी शर्त के साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बाकी पैसों की रकम को दांव पर लगाऊंगा और जब तुम जीत जाओगे तो मेरे पैसे मुझे वापस दे देना। रिदांश उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, और क्या मैं इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? लड़का, इसकी दो वजहें हैं। पहली तो तुम्हारा जज्बा और खुद पर अटूट विश्वास, और दूसरा, अभी कुछ देर पहले तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, और तुम्हारा खुद पर दांव लगाने का मतलब है पूरे परिवार को दांव पर लगाना, और अपने परिवार को इस पैसे के लिए दर्द से गुजरते देखना, उन्हें खोना। क्या होता है ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि एक वक्त था जब मैं इसी दर्द से गुजर चुका हूँ और अपने परिवार को इस बेदर्द गरीबी और भूख की आग से नहीं बचा पाया था, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई और भी मेरी तरह इसी दर्द से गुजरे। आज मेरे पास पैसा है, दौलत है, लेकिन परिवार नहीं, और मैं दिल से चाहूँगा कि तुम कभी मेरी जगह खड़े होकर ये बात किसी को न बोलो जो आज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। लेकिन लड़का टोकते हुए, जब गरीबी और तंगी सर पर सवार होती है ना, तो ये साली किस्मत भी बस अक्सर धोखा ही देकर जाती है। और एक बार सोचो अपने परिवार के लिए कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनको कौन देखेगा। रिदांश कुछ सोचते हुए, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भी कीमत मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें मंजूर होगी तभी मैं तुम्हारी इस बात को मानूंगा। लड़का, मंजूर है। रिदांश, तुम्हारा नाम? दक्ष। इसके बाद रिदांश दक्ष के साथ दांव लगाकर जॉन के साथ खेल शुरू करता है। इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी को डीलर से चार कार्ड बांटे जाते हैं जिसमें केंद्र में चार कार्ड फेस अप होते हैं। सौदा, परंपरागत रूप से एक बार में दो कार्ड, प्रत्येक खिलाड़ी को दो कार्ड, टेबल पर दो कार्ड और डीलर को दो कार्ड, शेष कार्ड अलग रखे गए हैं। प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा अपने चार पत्ते खेलने के बाद उन्हें शेष पत्तों के ढेर में से चार और बांटे जाते हैं। पहली डील के बाद टेबल पर कोई और कार्ड नहीं बांटा जाता है। ये तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी 52 कार्ड नहीं खेले जाते। अंतिम हाथ का काम करते समय डीलर को अंतिम की घोषणा करनी चाहिए। आखिरी हाथ खेला जाने के बाद और डीलर के बाईं ओर जाने के बाद स्थिति बना ली जाती है। वहाँ मौजूद इतनी छोटी उम्र के रिदांश और दक्ष को खेल देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। शुरुआत में देखने वालों को लग रहा था कि रिदांश की गेम वीक चल रही है, लेकिन खेल के आखिरी पड़ाव आने तक रिदांश ने पूरे खेल को अपनी तेज बुद्धि और दिमाग से पलट कर रख दिया था, और इसी के साथ आखिर में रिदांश ने ये खेल जीत लिया था। जिस तरह से रिदांश ने ये खेल खेला, वहाँ मौजूद हर इंसान उसके दिमाग और ट्रिक की दाद दे रहा था। जीत की मिली राशि को मिलाकर अब रिदांश के पास पूरे 50 लाख हो चुके थे, जिसमें से 5 उसके अपने थे, 20 दक्ष के और बाकी के जीत में हासिल किए थे। लेकिन रिदांश ने सारी राशि में से केवल 10 अपने पास रखे थे और बाकी के 40 दक्ष के हवाले कर दिए, जो देखकर दक्ष भी असमंजस में था। दक्ष, लेकिन ये तो तुम्हारे हैं ना, फिर मुझे इतने सारे रुपये क्यों दे रहे हो? नहीं, मैंने अपनी रकम से कमाई राशि ले ली, बाकी की रकम मैंने तुम्हारे पैसों से कमाई है, इसलिए उस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। दक्ष, लेकिन, टोकते हुए, शर्त के मुताबिक भी यही बात हुई थी कि जो मैं दूंगा वो तुम चुपचाप रख लोगे। थैंक यू नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो तुमने किया है उसका बदला तो मैं अपनी पूरी जिंदगी भी अगर तुम्हारे नाम कर दूं तो भी कम है, और सच तो ये है कि मैं अगर खुद भी करना चाहूं तो भी तुम्हारा शुक्रिया कभी अदा नहीं कर सकता। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं कभी ये जीत हासिल ही नहीं कर पाता। दक्ष, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि मैंने कुछ भी किया है तुम्हारे लिए तो बेशक तुम मुझे इसका बदला दे सकते हो। रिदांश, और वो कैसे? दक्ष, अपना हाथ आगे बढ़ाकर, अपनी दोस्ती का तोहफा देकर। रिदांश, अपना हाथ आगे बढ़ाकर। इट वुड बी माई प्लेजर। फ्लैशबैक एंड। प्रिशा, उस दिन के बाद से भाई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और दक्ष और भाई ने कभी भी फिर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, और कुछ वक्त बाद अनिकेत भाई, जो पापा के बहुत अच्छे दोस्त के बेटे होने के साथ ही भाई के बचपन के भी दोस्त थे, यूएस से लौटे और उन्हें हमारे हालात के बारे में सब पता चला, तो वो भी भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर परेशानी और तकलीफ में साथ रहे। इन तीनों का साथ भले ही किस्मत ने जोड़ा था, लेकिन इन तीनों ने अपने साथ को अपनी ऐसी मजबूत ताकत बना लिया जिसकी नींव हिलाना आज तक किसी के बस की बात नहीं। धीरे धीरे भाई ने अपनी मेहनत और जुनून से वो सब हासिल किया जो हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। पूरी दुनिया को आज रिदांश अग्निहोत्री एक चमकता सितारा नजर आता है, एक ऐसा सितारा जिसके पास कोई आए तो वो उसकी तपिश और तेज से ही जल जाए, जिसकी एक आवाज़ से लोगों की नज़रें और आवाज़ झुक जाती है, जिसके आज खड़े होने पर कोई बैठा नहीं रह सकता। लेकिन इस सब को पाने के लिए मेरे भाई को 10 साल लगे, 9 साल लगे भाई को यहाँ तक पहुँचने में, और इन बीते 9 सालों में वो हर पल जिस दर्द और तकलीफ से गुजरे उसका अंदाज़ा किसी को नहीं। सबको लगता है रिदांश अग्निहोत्री बस एक हार्टलेस और घमंडी बिजनेस टाइकून है, लेकिन क्या कोई उस 18 साल के लड़के और उसके छोटे भाई बहन की उस बेबसी को महसूस भी कर सकता है जहाँ छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने बाप को खो दिया, जहाँ उनकी जन्म देने वाली माँ उन्हें आज तक ठीक से पहचानती तक नहीं है, जहाँ उसके पास अक्सर कितनी बार खाने के लिए लोगों के ताने और गालियाँ ही होते थे, अक्सर कितनी रातें हमारे भाई ने बस हमारे लिए जागकर भूखे पेट गुजार दी ताकि हम चैन से भरपेट सो सकें। हमारे भविष्य के लिए उन्होंने अपने आप तक को दांव पर लगा दिया था। मैं कैसे उस फरिश्ते जैसे भाई को गलत कहना तो दूर, ख्यालों में भी गलत सोच तक नहीं सकती। सच तो ये है कि अगर भाई नहीं होते तो आज हम में से कोई भी शायद जिंदा ही नहीं होता, और अगर होते भी तो कहीं दर दर की ठोकरें ही खा रहे होते। इतना कहते कहते प्रिशा बहुत ज्यादा भावुक हो उठती है और आरना अपने ख्यालों से बाहर आकर उसके लिए पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाती है, और जब वो कुछ देर बाद पानी का ग्लास लिए वहाँ आती है तो रिदांश को प्रिशा के पास देखती है और आरना के कदम उसे वहाँ देख कर वहीं कुछ दूरी पर रुक जाते हैं। रिदांश, जो कि अपनी माँ को सुलाकर अभी अभी यहाँ आया था और प्रिशा को रोता देख उसके पास ही रुककर उसे सांत्वना दे रहा था, जिसे देखकर आरना काफी हैरान थी क्योंकि उसने कभी ऐसी सॉफ्ट साइड इमेजिन तक नहीं की थी, फिर चाहे वो उसकी फैमिली के लिए ही क्यों ना हो। इस वक्त रिदांश बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रहा था और वो एक पिता की भांति प्रिशा को प्यार और सुकून से शांत करने की कोशिश कर रहा था, और फिर प्रिशा थी भी उसकी सबसे छोटी बहन तो थोड़ी लाडली होना भी जाहिर था, मगर आरना के लिए ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था।
भाई, आखिर कब तक सब ऐसे रहेगा, और आखिर कब माँ हमें पहचान कर प्यार से अपने सीने से लगाएंगी? आखिर कब तक उनकी ममता पाने के लिए हमारा दिल यूं ही तड़पता रहेगा, और आखिर कब सब ठीक होगा भाई, आखिर कब? रिदांश प्रिशा का सर सहलाते हुए, डोंट वरी, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब भाई, ट्रस्ट है ना अपने भाई पर, ईश्वर से भी ज्यादा। रिदांश प्रिशा के सर को चूमकर, तो बस फिर ट्रस्ट मी और बिल्कुल रोना बंद करो। रिमेम्बर, तुम प्रिशा अग्निहोत्री हो, रिदांश अग्निहोत्री की बहन, और तुम्हारी आंखों में बेबसी के ये आंसू बिल्कुल शोभा नहीं देते, और अग्निहोत्री अपना सर कटा भले ही सकते हैं लेकिन किसी के आगे झुका नहीं सकते, फिर चाहे वो हालात हों या फिर कोई इंसान। और जितना हमारी तकदीर है, वरना हमारे खून में इतनी ताकत तो बेशक है कि हम अपनी तकदीर अपने हाथों बदल सकते हैं, राइट? रिदांश की बात सुनकर प्रिशा अपने आंसू साफ करते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है, और तभी ऐन मौके पर आज हुई इन सब बातों और वाक्य से अनजान आयुष घर में आता है, और जब रिदांश की नज़र उस पर पड़ती है तो वो प्रिशा को छोड़कर आयुष की तरफ बढ़ता है और उसके सामने जाकर अचानक ही एक जोरदार थप्पड़ आयुष के बाईं गाल पर जड़ देता है, और आयुष, जो बिल्कुल भी इस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं था, अचानक लगे इस जोरदार थप्पड़ से वो अपना बैलेंस खो देता है और बराबर में पड़ी कुर्सी पर मुंह के बल गिर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके होठों के किनारे से खून रिसने लगता है। और इस वक्त कुछ वक्त पहले से बिल्कुल विपरीत, एक बार फिर आरना को रिदांश के चेहरे पर हमेशा की तरह दिखने वाला उसका बेतहाशा गुस्सा और उसके कठोर भाव ही नजर आ रहे थे।